समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी बात करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा की इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी राम्या। राम्या, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लवली लिसनर्स हु हैव ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM गोल्ड। आई एम रम्या एंड विथ मी टुडे इज माय को-होस्ट मुकेश, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, बिजनेस कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes, but first we'll begin with the news headlines first, Mukesh.
जी हाँ, G20 शिखर सम्मेलन आज शाम ब्राजील के रियो डी जेनेरो में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों और नई दिल्ली घोषणा पत्र के परिणामों पर भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगे।
Leaders from various political parties make last-ditch efforts to woo the voters as election campaign for Jharkhand and Maharashtra assembly polls to end this evening.
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।
एयर क्वालिटी प्लंजेस टू सिवियर प्लस लेवल इन दिल्ली एज AQI हिट्स 487 मार्क, फ्लाइट्स एंड ट्रेन सर्विसेज अफेक्टेड ड्यू टू डेंस फॉग।
और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जमबर्ग में GT ओपन टूर्नामेंट में महिलाओं की तीरंदाजी कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we will talk about World Antimicrobial Resistance Awareness Week.
बिल्कुल राम्या, रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है
जी।
जो जीवन रक्षक दवाओं के प्रभाव और दुनिया भर में संक्रामक रोगों के प्रबंधन को प्रभावित कर रहा है। हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि AMR सीधे तौर पर 39 मिलियन से अधिक लोगों की मौत का कारण बनेगा और वर्ष 2025 के और 2050 के बीच व्यापक रूप से 169 मिलियन लोगों की मौत से जुड़ा रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने AMR को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में माना है।
Yes, Mukesh, and antimicrobial resistance, that is AMR, is a pressing global health and socio-economic crisis. It has significant impacts on human and animal health, food production and the environment. Antimicrobial resistance is the resistance acquired by any microorganism, it can be bacteria, viruses, fungi, parasites or anything, against antimicrobial drugs such as antibiotics, antifungals, antivirals and antimalarials that are used to treat infections. AMR can render previously effective antibiotics ineffective against bacterial infections. This complicates the treatment of common illnesses like pneumonia, urinary tract infections and skin infections, leading to prolonged illnesses, more severe symptoms and increased mortality rates. As a result, standard treatments become ineffective, infections persist and may spread to others.
जी हाँ, AMR कुछ चिकित्सीय प्रक्रियाओं को जोखिमपूर्ण बना देता है। मानक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी संक्रमण के बढ़ते जोखिम के कारण सर्जरी, कैंसर कीमोथेरेपी और अंग प्रत्यारोपण अधिक खतरनाक हो जाते हैं। ई कोली, क्लेबेसिएला, एसिनोटोबैक्टर, स्टेफलोकोरियंस, एंटीकोकस जैसे बैक्टीरिया नवीनतम पीढ़ी के एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति भी प्रतिरोधी हो गए हैं। और एक प्राकृतिक घटना है ये, और क्योंकि बैक्टीरिया विकसित होते रहते हैं जिससे संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं कम प्रभावी हो जाती हैं, रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को कभी कभी सुपर बग भी कहा जाता है।
And drug-resistant microorganisms, including bacteria, viruses, fungi, and parasites, can emerge and spread between and within human, animal, and plant populations and the environment. This is so shocking. And they know no borders, posing a threat to everyone, everywhere. And increased use and misuse of antimicrobials across sectors and other microbial stressors, such as pollution, create favorable conditions for microorganisms to develop resistance. Bacteria in water, soil, and air, for example, can acquire resistance following contact with resistant microorganisms.
बिल्कुल, पर्यावरण में AMR का मानव संपर्क दूषित पानी, दूषित भोजन, फंगल जीवाणुओं के सांस लेने और रोगाणुरोधी जो प्रतिरोधी हैं सूक्ष्म जीवों वाले अन्य मार्गों के माध्यम के संपर्क से हो सकता है।
जी,
AMR के प्रसार के कारणों में ये भी शामिल हैं। इनमें संचारी रोगों का उच्च प्रसार, अत्यधिक बोझ से दबी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, खराब संक्रमण नियंत्रण प्रथाएं और अस्पतालों, उद्योगों और शहरी बस्तियों से निकलने वाले अपशिष्ट शामिल हैं।
Given the cross-cutting nature of this challenge, addressing AMR requires action across sectors using the One Health approach. This holistic approach recognizes that the health of humans, domestic and wild animals, plants, and the wider environment, including ecosystems, are closely linked and interdependent.
इस वर्ष हम जिद्दा में 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की AMR पर उच्च स्तरीय बैठक और चौथे वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में AMR पर 2024 राजनीतिक घोषणा की ऐतिहासिक मंजूरी के बाद विश्व AMR जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं। ये महत्वपूर्ण घोषणा महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है, साथ ही AMR कार्रवाई के लिए स्थायी वित्त पोषण भी स्थापित करती है, जिससे वर्ष 2030 तक वित्त पोषित राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को लागू करने वाले कम से कम 60% देशों का लक्ष्य भी शामिल है।
जी, एंड High population density, restricted healthcare access, and the misuse of antimicrobials amplify the risk and impacts of AMR, which is why recognizing these challenges, SEARO, that is World Health Organization, Southeast Asian region has been proactive in advocating against AMR at regional and global levels. World AMR Awareness Week, or WAAW's theme this year is Educate, Advocate, Act Now. It calls on the global community to take immediate and decisive action by educating all stakeholders on AMR.
बिल्कुल, पर्यावरण में AMR को कम करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स, कृषि खाद्य और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से अपशिष्ट पदार्थों और अपशिष्ट जल के सुरक्षित निपटान और प्रबंधन के साथ निर्वहन को कम करना पड़ेगा। खाद्य और कृषि संगठन की सतत कृषि खाद्य प्रणाली परिवर्तन के लिए खेतों पर रोगाणुरोधकों की आवश्यकता को कम करने की पहल देशों को अच्छे उत्पादन और खेती के तरीकों को लागू करने में सहायता करती है जो रोगाणुरोधकों पर निर्भरता को कम करते हैं।
The government of India has taken many initiatives to combat antimicrobial resistance. National surveillance networks, including laboratories from across the country, have been established and are generating national AMR surveillance reports annually and also submitting data to the global AMR surveillance system. The National Guideline on Infection Prevention was launched and translated to training material.
बिल्कुल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2017 में AMR NAP AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की, जिसे AMR पर वैश्विक कार्य योजना के अनुरूप विकसित किया गया। कार्य योजना विभिन्न हितधारक मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और ये योजना जो है वो उसकी अवधि 5 साल की है।
जी, As we observe the World AMR Awareness Week 2024, let us commit to educating our communities, advocating for robust policies and taking decisive actions to combat antimicrobial resistance. It's only through united efforts and commitment that we can protect the efficacy of antimicrobials for years to come.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है। तो इस क्रम में सबसे पहले G20 की चर्चा करें।
बिल्कुल। The 19th G20 summit is set to start today at the Museum of Modern Art in the Brazilian city of Rio de Janeiro. The heads of member states and representatives of international organizations will participate in various sessions and deliberate on the priority areas of this year's declaration. The theme of G20 summit this year is Building a Just and Sustainable World. More from our correspondent who is covering G20 summit in Brazil.
G20 की स्थापना 1999 में काफी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकटों की एक श्रृंखला के बाद हुई और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य इसके सदस्य देशों के वित्तीय मंत्रियों को चर्चा करने का मंच देना था। 2006 में पहला G20 शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों की बैठक वाशिंगटन में हुई। जब 2006 की आर्थिक संकट लेहमन ब्रदर्स के पतन से प्रभावित होकर चरम पे था, तब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आवश्यकता महसूस हुई। ये सम्मेलन 2011 के उपरांत ही सालाना आयोजित होने लगा है। इस व्यवस्था में अध्यक्षता करने वाला देश आयोजन होने वाले शहर का नामांकन करता है, जैसे कि 2024 में ब्राजील द्वारा रियो डी जेनेरियो चुना गया है। शुरुआती दौर में जहां G20 के मुख्य उद्देश्य व्यापक आर्थिक समस्याएं थी, लेकिन आगे चलकर इसकी कार्यसूची में सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन और भ्रष्टाचार का मुकाबला जैसे और मुद्दे भी जुड़ते गए हैं। G20 के सदस्य विश्व के सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 88%, विश्व व्यापार का 87% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिक्रमा के लिए ब्राजील से साक्षी सिंह।
और अब चलते हैं तेलंगाना और जानते हैं कि वहां पर धान की पैदावार किस तरह की हुई है।
जी, एज यू सेड मुकेश, तेलंगाना स्टेट टॉप द कंट्री इन पैडी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन बाय रिकॉर्डिंग अ यील्ड ऑफ 153 लाख मेट्रिक टन्स फ्रॉम 66.7 लाख एकर्स। स्टेट चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी अनाउंस्ड दिस यस्टरडे। मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
द फार्मर्स ऑफ तेलंगाना हैव अचीव्ड द हाईएस्ट यील्ड ऑफ पैडी इन द कंट्री ड्यूरिंग खरीफ सीजन। This is not only higher than that of the record yield of the United Andhra Pradesh, but also gained significance when this was possible without using a drop of water from the prestigious Kaleshwaram lift irrigation project. It may be known that the Medigadda Barrage, a part of the Kaleshwaram lift irrigation project, sunk in October last year. Subsequent to damage to the remaining two barrages, called Annaram and Sundilla, the state government had avoided storage of water this year during Kharif season and due to apprehensions that it could lead to the entire project being washed away. The damage and lapses in construction of Kaleshwaram project are now the subject of a commission of enquiry headed by Justice P.C. Ghosh. 4 years ago, paddy was cultivated in over 52.5 lakh acres and production was 96.3 lakh metric tons. This grew to 65.94 lakh acres and 144.8 lakh metric tons last year. It was pointed out that without using the Kaleshwaram project, the area under paddy increased to 66 lakh 77,000 acres this year. And the state recorded the highest yield of 153 lakh metric tons. Saluting the farmers, Chief Minister Revanth Reddy attributed the achievement to the measures taken by the state government and said it will be providing the farmers more benefits. He said it is unparalleled yield both in the history of undivided Andhra Pradesh and in the history of Telangana state after its formation. Lakshmi for Parikrama, Hyderabad.
So Mukesh, can you enlighten our listeners about the India International Trade Fair that's taking place in Delhi?
बिल्कुल, कला संस्कृति और विरासत का अद्भुत संगम सरस आजीविका मेला दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंतर्गत आयोजित इस मेले में आगंतुकों को हस्तशिल्प, वास्तुकला और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां देखने को मिल रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस मेले में महिला कारीगरों की प्रेरक यात्रा का जीवंत प्रमाण है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सरस आजीविका मेला नवाचार का एक उत्सव है। भारत मंडपम में आयोजित इस मेले में दीनदयाल अंत्योदय योजना पहल के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई है। आगंतुकों को मेले में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और 450 से अधिक लखपति दीदियों की उद्यमशीलता देखने का अवसर मिलेगा। इस मेले के जरिए लखपति दीदियां समाज में पारंपरिक शिल्प को संपन्न व्यवसायों में बदल रही हैं। मेले में छत्तीसगढ़ की बस्तर कला, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, महाराष्ट्र की कोलापुरी चप्पल, पश्चिम बंगाल की काथा साड़ी, आंध्र प्रदेश की गुंडूर मिर्ची और गोवा के गोवन काजू आगंतुक खरीद सकते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इस महीने की 19 तारीख से 27 नवंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। मेले के टिकट 55 नामित DMRC मेट्रो स्टेशनों, भारत मंडपम मोबाइल ऐप और ITPO की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परिक्रमा के लिए अमन यादव।
और अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, क्या कुछ खास है वहाँ से?
जी, इन अरुणाचल प्रदेश द इंडियन आर्मीज गजराज कोर ऑब्जर्व्ड नुरानांग डे 2024 एट जसवंतगढ़ इन तवांग यस्टरडे एंड पेड होमेज टू द हीरोइक सैक्रिफाइसेस मेड बाय फोर गढ़वाल राइफल्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ नुरानांग ऑन 17th November 1962. अ रिपोर्ट.
As a tribute to the courage and sacrifice of Indochina war heroes of 1962, Indian Army organized a series of commemorative events at two war memorials in Arunachal Pradesh on November 17 and 18. The two war memorials are Jaswantgarh War Memorial in Tawang and Nuuk Madung War Memorial in West Kameng District. Indian Army's Gajraj Corps yesterday commemorated the Nuranang Day 2024 at Jaswantgarh in Tawang, honoring the valiant sacrifices of the four Garhwal Rifles during the 1962 Battle of Nuranang. This solemn occasion paid tribute to Rifleman Jaswant Singh Rawat, Mahavir Chakra, and his comrades who displayed extraordinary bravery in the face of overwhelming odds. The day began with a red-laying ceremony at the Jaswantgarh War Memorial, attended by Rawat's family, civil officials, ex-servicemen, students and over 300 participants. A newly established memorial, Smriti Sthal, was inaugurated on the occasion, showcasing artifacts that commemorate the gallantry of India's war heroes. As a run-up to the Nuranang Day, the Indian Army had organized community events, including an ex-servicemen's meet, various competitions and a free medical camp for the civilians. For Parikrama, Rakesh Tole, Akashvani News, Itanagar.
So Mukesh, can you enlighten our listeners about what's happening right now in Ladakh?
जी हाँ, एक प्रेरक पहल में सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट विजयक ने क्षेत्र के युवा कलाकारों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए करगिल में एक जीवंत कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है. तो सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट.
The event organized by Team Stringmo in collaboration with Ms. Roma Behl was inaugurated by the Chief Executive Councillor Dr. Muhammad Jafar Akhond, the Chief Guest, along with Brigadier Vinay Behl, Chief Engineer of Project Vijay, Kacho Imtiaz, Joint Director Information UT Ladakh, and other dignitaries and community leaders. The exhibition marks a significant step in Project Vijay's efforts to nurture creativity and empower Kargil's youth. By repurposing its headquarters into an artistic training space, the project has provided budding artists space and support. Under the guidance of Ms. Roma Behl and the vision of Brigadier Vinay Behl, this initiative has already achieved remarkable results, with one student recently earning admission to the prestigious College of Fine Arts in Jammu. Chief Executive Councillor Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil praised Project Vijayak for going beyond its traditional infrastructural role to support local youth through creative development. He expressed gratitude to Brigadier Vinay Behl and the Bureau for their commitment to enhancing the region's quality of life. This initiative is a testament to the transformative potential of providing resources and mentorship to our youth, he remarked. Dr. Jafar also appreciated the efforts of Sajjad Hussain Bob for mentoring the girl artists from unprivileged families of Kargil to reach such a height, getting recognition at UT level. Later, the team Stringmo presented tokens of appreciation to Brigadier Vinay Behl and her other guests as a gesture of gratitude for their support. For Parikrama, this is Anad Ali from Kargil, Union Territory of Ladakh.
Now, now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
18th November is the birth anniversary of the great freedom fighter and revolutionary Batukeshwar Dutt. He was born on November 18, 1910 in Bardhaman district of West Bengal. Dutt spent his early childhood in Uttar Pradesh's Kanpur and studied there. His journey as a revolutionary activist began in his early teenage years after witnessing an Indian child being brutally beaten up by the British on the Mal Road in Kanpur. The child had wandered onto the road, which was prohibited for Indians. This incident had a huge impact on Batukeshwar Dutt, and he started to seek out anti-colonial activists.
Through Suresh Chandra Bhattacharya, who was an editor at Pratap, Dutt came in contact with revolutionaries like Sachindranath Sanyal, who was co-founder of the Hindustan Republican Association. Both Batukeshwar Dutt and Bhagat Singh joined the revolutionary party around the same time. The friendship between them grew as they spent time in Kanpur. When Kanpur was flooded in 1924, they volunteered to help victims. Dutt also helped Bhagat Singh learn Bengali and introduced him to the poetry of Qazi Nazrul Islam, which he would often sing. On 8th April 1929, Badukeshwar Dutt and Bhagat Singh fearlessly chanted Inqilab Zindabad and Samrajyavad Ka Naash Ho as they were getting arrested for storming the Central Legislative Assembly with smoke bombs, registering their protest against the trade disputes and public safety bills.
Badukeshwar Dutt was awarded a life sentence in the assembly bomb case and was deported to the Andaman Cellular Jail. Here, he participated in two hunger strikes for the rights of political prisoners and against their inhuman torture. Later, he was transferred from Andaman Cellular Jail to Hazaribagh Jail in 1937, from there to Delhi Jail, and finally to the Patna Jail.
He was released on September 8, 1938, as his health began to deteriorate due to several ailments he caught during inhuman torture in Andaman Cellular Jail. Dutt was released on the condition that he will not participate in any kind of violent political activity or will not get associated with any political formation which professed violence. Upon release, with his health recuperating, he re-engaged in revolutionary politics, thereby violating the conditions of his release.
Badukeshwar Dutt also participated in the Quit India movement in 1942 and was subsequently arrested, only to be released in 1947. Dutt died of cancer on July 20, 1965 in Delhi. He was frequently visited in the hospital by Bhagat Singh's 85-year-old mother, Vidyavati Devi, who had a lot of affection for him. She was with him during his last days. In accordance with his last wish, Dutt was cremated in Husainiwala, Punjab, alongside Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru.
18th of November is also the death anniversary of the great freedom fighter and patriot Veliyappan Olaganathan Chidambaram, also known as VOC. He was also called Kappalottiya Tamiran or the Tamil Helmsman. He was a prominent lawyer, trade union leader and leader of the International Congress. Chidambaram mobilized the workers of the coral mills, thereby expanding the social base of the Swadeshi movement. This led to a conflict with the British Raj. After undergoing ordeals, he established the Swadeshi Steam Navigation Company in 1906 to challenge the monopoly of the British India Steam Navigation Company.
He launched the first Indian shipping service between Tuticorin and Colombo with the help of the Swadeshi Steam Navigation Company. One of India's major ports, that is, the Tuticorin Port Trust, is named after him. Tuticorin became the citadel of the freedom struggle in the early years of the 20th century. V.O. Chidambaram sowed the seeds of nationalism and independence with the doctrine of Swadeshi and boycott. He was charged with sedition by the British colonial government and was sentenced to life imprisonment. His barrister license was also revoked. VOC died on 18th November 1936 in the Indian National Congress office at Tuticorin.
In business news today, domestic benchmark equity indices today ended with losses amid mixed global cues, extending their losing streak to seventh consecutive session. The 30-share BSE Sensex shed 241 points to close at 77,339, while NSE Nifty 50 slipped 79 points to settle at 23,454.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं धर्मेंद्र से खेल जगत की हलचल.
भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच से बाहर रहेंगे. उनकी जगह उप कप्तान जसप्रीत बुमराह टीम की कमान संभालेंगे. बुमराह इससे पहले 2021-22 में इंग्लैंड में हुए टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं. उस समय रोहित शर्मा कोविड से ग्रसित होने के कारण पांचवें टेस्ट में भाग नहीं ले सके थे. इसके अतिरिक्त सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भी पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे. अंगूठे में चोट के कारण उन्हें बाहर रखा गया है. मैच से पहले टीम की ट्रेनिंग के दौरान फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए थे। केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन पहले मैच में शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जगह खेल सकते हैं। उधर कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने कल एक राउंड शेष रहते हुए ब्लिट्स खिताब जीतकर डबल पूरा किया। उन्होंने अंतिम दौर में भारत के अर्जुन एरिगेसी के खिलाफ वापसी की और अजय 12 अंक तक पहुंच गए। कार्लसन ने अंतिम राउंड में विदित गुजराती को हराकर लगातार 3 जीत दर्ज की और 13 अंकों के साथ ब्लिट्स ताज हासिल किया। ये जीत कार्लसन की कोलकाता में दूसरी दोहरी जीत है। इससे पहले उन्होंने 2019 में भी यही उपलब्धि हासिल की थी। भारतीय खिलाड़ियों ने भी सराहनीय प्रदर्शन किया। एरिगेसी 10.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, आर प्रगणानंद 9.5 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे और विदित गुजराती 9 अंकों के साथ शीर्ष 5 में रहे। ज्योति सुरेखा विन्नम ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। जीटी ओपन में पहली बार खेलते हुए ज्योति विन्नम ने पूरी स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कल बेल्जियम की सारा पीएल्स को 147-145 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों
और अब याद कर लेते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक धीरेन्द्रनाथ गांगुली को। आज उनकी पुण्यतिथि है। धीरेन्द्रनाथ गांगुली को धीरेन गांगुली या डीजी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सिनेमा में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए सन 1975 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Today we are also remembering Indian film writer, director and actor Abrar Alvi on his death anniversary. In a chance meeting with Gurudutt on the sets of Baaz in 1953, Gurudutt was having some problems with the scene and Abrar suggested his opinion. He liked it so much that Abrar was invited to write the film Aar-Paar. Some of his memorable movies include Sahib Bevi aur Ghulam, Kagaz Ke Phool, Pyasa and Mr. and Mrs. 55. Let's listen to this dialogue from Pyasa.
मुझे उनसे कोई शिकायत, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मूर्तों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है।
और आज पुण्यतिथि है परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेनानी मेजर शैतान सिंह की। इन्हें ये सम्मान 1962 में मरणोपरांत मिला था। मेजर शैतान सिंह का शौर्य पराक्रम चीन के खिलाफ लड़ते हुए रिजांग ला मोर्चे पर अंतिम बार 18 नवंबर 1962 को नजर आया। वो चुशूर सेक्टर में 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की गोला बारूद से लैस भारतीय सेना का सामना कर रहे थे और उस मोर्चे पर उन्होंने अदम्य साहस, कुशल नेतृत्व क्षमता तथा देश के प्रति गहरी समर्पण भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आज ही पुण्यतिथि है भारतीय वायुसेना के गरुण कमांडो में से एक ज्योति प्रकाश निराला की। कश्मीर में शहीद होने वाले कारपोलर ज्योति प्रकाश निराला को 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जांबाज निराला को मरणोपरांत ये सम्मान दिया था।
Today is the birthday of singer, songwriter, music director and composer Zubeen Garg. You must have heard the movie Gangster song Ya Ali. Wo gana inhone hi gaya hai. To chaliye isi gaane ko sunte hain thoda.
और राम्या, हिंदी फिल्मों में बतौर निर्देशक शुरुआत करने वाले वी शांताराम की आज जयंती है। उन्होंने डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, अमर भूपाली, झनक झनक पायल बाजी, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग जैसी विविधतापूर्ण और गुण अर्थों वाली फिल्में बनाकर अलग मुकाम हासिल किया। तो क्यों ना उनकी फिल्म का एक गाना सुना जाए पहले।
बिल्कुल बिल्कुल।
Thank you.
For his work, he was conferred the Dada Saheb Phalke Award in 1985 and posthumously awarded the Padma Vibhushan in 1992.
हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में प्रमुखता से उभरे फिल्मकार वी शांताराम उन हस्तियों में से थे जिनके लिए फिल्में मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश देने का माध्यम थी। अपने लंबे फिल्मी सफर में उन्होंने प्रयोग धर्मिता को भी बढ़ावा दिया। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ इसी तरह की फिल्में थी। तो एक और गाना और श्रोताओं, इसी के साथ आज का परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। तो मुकेश कुमार और राम्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।